الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدرسن کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہم سنتے ہی ہیں. ایک بار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے چہرے سے خوشی واضح تھی، گویا کہ چہرہ کھلا ہوا تھا اور خوشی کے آثار نمایاں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے، اما یردی کا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں، اللہ یصلی احد من امتی کا، کہ کوئی ایک بھی شخص جو آپ کی امت میں سے آپ پر درود پڑے. اللہ فرماتا ہے، الا صلیت علیہ عشرہ، میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. یعنی کیا آپ اس بات پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں. اور پھر ارشاد فرمایا، اور آپ کا امتی ایک بار آپ کی ذات پر سلام بھیجے، اللہ فرماتا ہے، میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا. سبحان اللہ. یعنی رب کی طرف سے اسے سلامتیاں مل جاتی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر سلام بھیجے. اس پڑھنے والے کو یہ سلامتیاں عطا فرماتا ہے، یہ ایک بار درود بھیجتا ہے، رب 10 رحمتیں فرماتا ہے، جو گویا جتنا یہ درود بڑھاتا جائے رب کی رحمتیں اتنی اس پر چھما چھم برستی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ. مدرسین کے ناظرین، ایک مختصر سا جملہ، با ادب با نصیب یہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور بے ادب بے نصیب یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، یا بے ادب بد نصیب سنتے رہتے ہیں. یہ کلمات بظاہر تو مختصر ہیں مگر اپنے اندر بڑی ڈیٹیل اور تفصیل یہ لیے ہوئے ہیں. واقعی جو با ادب ہوتا ہے اسے دین کا ادب، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کے پیارے نبیوں، اللہ کے فرشتوں، ان چیزوں کے آداب اور احترام جس کے دل میں آ جائیں. ہمارا دین، ہمارا اسلام تو وہ خوبصورت اسلام ہے کہ جس نے چھوٹوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کرے، ان کی تعظیم بجا لائے، اور واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اس کے لیے یہ محرومی کو بیان کر دیا گیا کہ جو شخص وہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. یعنی ہمارے دین نے تو اس طرح کے بھی آداب اور احترام بیان فرمائے ہیں کہ جس میں بڑا چھوٹے پر شفقت کرے اور چھوٹا بڑے کا ادب کرے، تعظیم کرے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو شخص کسی کی اس وجہ سے تعظیم بجا لاتا ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کی یہ تعظیم اور توقیر بجا لانے والے جب یہ اس عمر میں پہنچے گا تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اللہ اس پر کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ یہ اگر ایک اہم ترین اصول ہماری زندگیوں میں نافذ ہو جائے اور ہر آدمی اپنے ارد گرد دیکھے، ہر گھر کا ماحول اس کے اندر یہ چیز آ جائے، کس طرح چھوٹوں نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور بڑوں نے چھوٹوں پر وہ شفقت کرنی، دونوں طرف سے یہ دین کے خوبصورت اصول و ضوابط ہیں کہ دونوں طرف یہ بیلنس رہے، بڑے شفقت کریں چھوٹے ادب کریں، تو یہ جہاں یہ ماحول ہوتا ہے تو وہاں گھر بھی آباد ہوتے ہیں، وہاں آفیسز بھی آباد ہوتے ہیں، وہاں آدمی بزنس کی جگہ پر ہو یا کہیں بھی ہو، چاہے مسجد کا ماحول ہو یا مدارس کا ماحول ہو، وہ دینی کوئی محافل ہوں یا دنیاوی کوئی مشاغل ہوں، اگر یہ باؤنڈریز اور یہ آداب اور احترام کے معاملات رہتے ہیں تو وہاں کامیابی ہی کامیابی رہتی ہے۔ اور جہاں بے ادبی کے معاملات، بالخصوص دین کے حوالے سے اگر بے ادبی کے کوئی پہلو ہوں یا معاملات ہوں، ماذا اللہ، کوئی اللہ کے بارے میں یا اللہ کے نبیوں کے بارے میں یا اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل فرمائے ان احکامات کے حوالے سے، یا جو بھی جس چیز کو نسبت ہے، مبارک ہے، کوئی عظمت والی شے ہے، تو وہاں میرے محترم مدنی چین کے ناظرین ہمیں ادب کے تقاضے اور بڑھ جائیں گے کہ ادنا سی بھی بے ادبی یا توہین معاذ اللہ اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ایسی بے ادبی یا توہین یا تحقیر والا معاملہ جو انسان کو وہ کفر کے اندر ڈال دیتا ہے، تو یہاں ادب کی اہمیت اور ادب کو لازم پکڑنا یہ بہت بڑا ایک اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اور ایسی ہستیوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم پڑھیں تو ایسے کئی ہمیں وہاں پہ بھی واقعات کے بارے میں، کسی کے بارے میں اشارتاً فرمایا گیا، کسی کے بارے میں صراحتاً فرمایا گیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ رائنا کہتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی بات دوبارہ دہرا دیتے تھے، وہ دوبارہ سنتے تھے، رائے نہ کہتے تھے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے تھے۔ اب کچھ ایسے بھی شامل ہو گئے ان میں جو معاذ اللہ یہود کی زبان میں جو ایک غلط معنی ہے وہ اس معنی میں استعمال کرتے ہوئے، وہ نیت رکھتے ہوئے اس کلمے کو بولتے، اور بعض مفسرین نے بیان کیا راعی نہ کہتے کہ جس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک تحقیر والا معنی بن جاتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول وہ اس معنی کو سمجھتے تھے، یہود کی زبان کو جانتے تھے، اس لغت کو جاننے والے تھے، تو انہوں نے بڑا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا یہود کے سامنے، تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینہ بولتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم کیا بولتے ہیں، آپ خود بولتے ہیں، آپ کے اصحاب بولتے ہیں، وہ بھی تو بولتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں تو ہم نے کہا تو اس میں کیا ہوا؟ تو آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بولنا، اصحاب کا بولنا وہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہے، اچھے ارادوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ جس طریقے سے یہ کلمہ زبان سے نکالتے ہیں، یہ بولتے ہیں، کہا کہ یہ تو وہ برا معنی ذہن میں رکھتے ہیں، بری نیت سے یہ رائنہ کا کلمہ بولتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا حکم نازل فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فرمایا اے ایمان والو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا اور کہو کہ آپ ہم پر نظر فرمائیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر نظر رحمت فرما دے، वस्मऊ और गौर से सुनो, वस्मऊ और गौर से सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। यहां पर यह इरशाद फरमा दिया गया कि अब राइना भी कोई ना कहे क्योंकि इसमें वो गलत माना रखते हैं, एक दूसरे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत इरादा रखते हुए ये कलिमा इस्तेमाल करते हैं और एक बेअदबी का शायबा इसमें इस अंदाज से उनके बोलने में ना कि असहाब के बोलने में। तो अल्लाह को यह भी पसंद ना आया कि कोई ऐसा लफ्ज जिसके दो माने बनते हो और एक माना उसके अंदर तहकीर वाला निकलता हो, फरमाया मेरे महबूब के लिए वो भी ना बोलो, राइना भी मत कहो, जो कि 100% दुरुस्त नियत के साथ कहा जाता था। असहाबे रसूल उसको मोहब्बत एहतराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को दोबारा सुनने के लिए उसको कहते थे और इससे भी अल्लाह ने मना फरमा दिया कि यहूद चूंकि बुरा माना रखता है और यहूद की लुगत में इसका एक बुरा माना है और यहूद उसी बुरे माने को जेहन में रखकर ये कलिमा दोहराते हैं, लिहाजा ए ईमान वालो तुम ये दुरुस्त कलिमा दुरुस्त माना रखकर भी ना बोलो ताकि तुम्हारी इनके दरमियान ये कलिमा बोलने की ये इश्तिराक ना हो जाए। ये भी मना कर दिया गया कि अब यहां दुरुस्त लफ्ज भी वो बोलना ये तुम्हारे लिए ये मना हो गया, यानी इस लफ्ज में इनकी लुगत में और असहाब के नजदीक कोई बेअदबी वाला माना नहीं था मगर एक और लुगत में बेअदबी वाला माना है, यहां यह भी मना हो गया है। अदब एहतराम ताजीम अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत मूसा अलैहि सलाम आपके बकसरत जिक्र आया कुरान में, वहां पर एक वाकया नौवें पारे में बलअम बिन बाउरा का भी आता है। बलअम बिन बाउरा बहुत बड़ा इबादत गुजार, इसमें आजम को जानने वाला और अपनी रूहानियत से अरशे आजम को देख लेता। कहा जाता है कि वो मुस्तजाबुद दावा था, यानी उसकी हर दुआ कबूल होती थी, बकसरत दुआएं कबूल होती थी और शागिर्दों की तादाद और दरसगाह के तालिब इल्मों के पास 12,000 दवातें थीं, कलम दवात यानी जिससे लिखना होता। ये हमें थोड़ा सा अजीब सी लगे लेकिन उस जमाने में जब ये स्याही इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी 12,000 दवातें होती और जिससे वो बाकायदा तलबा लिखते। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम जब्बारीन के साथ लड़ाई का हुक्म हुआ, जंग का हुक्म हुआ, जिहाद का हुक्म हुआ, तो आप आ रहे हैं तो बलम बिन बाउरा की जो कौम थी वो परेशान होकर ये बलम बिन बाउरा के पास कहा, आप इतने बड़े इबादत गुजारे, आप अरशे आजम को देख लेने वाले, इसमें आजम का विर्द करने वाले, हजारों की तादाद में शागिर्द आपके, आपसे दीन पढ़ने वाले, आपसे समझने वाले, सीखने वाले, तो क्यों ना हो आप हजरत मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ दुआ करो, यानी जिसे हम बद्दुआ कहते हैं उनके लिए बद्दुआ करो। तो इसने तो मना किया, कहा कि तुम्हारा नाश हो, तुम तबाह हो और तुम मुझे किस तरफ कह रहे हो कि मैं हजरत मूसा अलैहि सलाम के बारे में ऐसा कहूं, वो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन इस कौम ने चालाकी की और बड़े बड़े महंगे तहाइफ लिए, हीरे जवाहरात लिए और इनको लेकर इसके पास पहुंचे, इसको तोहफे दिए और ये लालच दिया कि ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप उनके खिलाफ बददुआ कर दें। जब बड़े महंगे तोहफे तहाइफ इसके सामने आए तो ये लोगों के इसरार को मान गया और तैयार हो गया कि मैं जाता हूं और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, अल्लाहु अकबर, यानी बदबख्ती की गोया कि इसकी इब्तिदा हो गई यहां से। जब एक अल्लाह के नबी के बारे में माद अल्लाह दिल के अंदर इस तरह की बात को पाल लिया और उनके खिलाफ दुआ करने जा रहे, तो ये जिस सवारी पर था वो सवारी उस गधी को भी अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और उसने भी कहा कि तुम्हारा बुरा हो, तुम तबाह हो, किस तरफ जा रहे हो? मेरा रास्ता फरिश्ते रोक रहे हैं, वो मुड़ती बार बार सवारी पीछे की तरफ कि मैं इधर नहीं जाना चाहती, लेकिन ये उसी सवारी गधी को और आगे की तरफ चलाता। उसने बोलकर भी कहा, लेकिन माल की हिर्स, लालच, तमे ने इसकी आंखों पे गोया के पट्टी को बांधा और ये उसी तरफ चलता गया, ये आगे बढ़ता गया, यहां तक कि वो मकाम और उस जगह पर पहुंचा जहां पर इसने बद्दुआ करनी थी। और इसने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का लश्कर देखा उस तरफ आते हुए, तो फिर इसने बोलना शुरू किया, जबान से इसने बोलना शुरू किया और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये दुआ वो करने के लिए जो जबान खोली, तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि ये बोलता कुछ है, जबान से कुछ निकलता है। बद्दुआ उधर की करनी थी, लेकिन ये अपनी कौम के बारे में कर रहा है। लोगों ने इसको टोका कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये यही कहता है, मैं बोलना ये चाहता हूं लेकिन निकलता ये है, मैं बोलना ये चाहता हूं लेकिन निकलता ये। तो ये देखिए, बिल आखिर इसकी जबान लटक कर सीने पर आ जाती है और ये कहता है, फिर ये कहता है, हे लोगों, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। और कुरान भी फरमाता है, फमसलुहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। अब इसकी मिसाल वो एक कुत्ते की तरह है कि जिसके बारे में कुरान ये भी फरमाए, वलो शेन आला रफाना, अगर हम चाहते तो उसको उठा लेते। अब बेअदबी की, यहां गुस्ताखी की, और हजरत मूसा अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे कलीम, उनके बारे में ऐसा कलिमा बोलने के लिए घर से निकला इस गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से जबान लटक आई और ये कहता, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। और ऐसा ही हुआ, तबाह बर्बाद हो गया। इसकी मुजम्मतों को बयान फरमाया कि इसकी मिसाल वो कुत्ते की तरह है, किसकी जबान लटक रही, एक चीज ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, कहां वो कि जो अर्श आजम को देख ले, और अब कहां कि उसकी जबान लटक आई और सीने पर, और ये अपना बुरा खात्मा गोया को उसको अपनी नजरों से दिख गया और उस पर या हो गया कि मैं माल की लालच में तबाह बर्बाद हो गया। और वो अपनी कौम को यही कहता रहा, मैं तबाह बर्बाद हो गया। और एक तरफ वो असहाब काहफ का कुत्ता है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराईहि बिलवसीद, उनका कुत्ता किलाइयां बिछा कर उनके सामने बैठा हुआ है। ये जानवर है कुत्ता, मगर उसने भी अदब किया अल्लाह के प्यारे बंदों का, तो अल्लाह उसको भी मकाम मदहा पे बयान फरमा रहा है। अगर वो चार हैं तो पांचवा उनका कुत्ता, अगर वो पांच हैं तो छठा उनका कुत्ता, और उनका कुत्ता किलाइयां बिछा के बैठा हुआ। तो जब आदमी अदब करता है, जब अदब करता है, तो उसे ये मकाम और मर्तबा भी मिलता है। ये जानवर है असहाबे काफ का कुत्ता, इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी सूरत मिलाकर इसे भी जन्नत का दाखिला अता फरमाएगा। वो पंजाबी के शायर ने क्या खूब कहा है ना, जेनु निस्बत पाका दी मिल जावे वो जन्नती है, भावे कुत्ता होवे बैठा किसे गार दे बुबे दे। कि जिन्हें निस्बत ये मिल जाए, और ये निस्बत की बात कुरान मजीद फुरकान हमीद में, अगर हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इनके ही वो तफसील से जो वाकया बयान किया हुआ है 15वें पारे के आखिर और 16वें पारे का आगाज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर के साथ जो सफर एक तवील आपने किया, और उन्होंने कहा था कि मेरे साथ तुम नहीं चल सकते, तुम सबर नहीं कर पाओगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं सबर करूंगा। लेकिन जाहिर है आपने कुछ ऐसे वाकयात जब देखे तो जो बज़ाहिर उस पर आपको हैरानगी हुई, तो आपने उनसे कहते रहे कि ये क्या किया। तो वो तीन वाकयात जो जाहिर हुए, उनमें से एक वाकया और आखिरी वाकया, क्या आपको भूख लगी हुई थी, एक शहर में गए। अच्छा, शहर में जाते हैं तो वहां जाकर आपने शहर वालों से कहा कि हमें भूख लगी, खाना खिलाओ। उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की, मेहमान नवाजी ना की तो इनको बड़ा जलाल था। अरे मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये कैसे लोग हैं, मेहमान नवाजी नहीं की। वहां एक दीवार देखी कि दीवार गिर रही है, वो दीवार गिर रही है, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इशारे से उसको दीवार को सीधा कर दिया, उसको गोया का आपने हाथ लगाया और उस दीवार को आपने सीधा कर दिया, वो बिल्कुल अपनी जगह कायम हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये लोग वो हैं जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की और आप इनकी दीवारें आपने ठीक कर रहे हैं, तो क्यों ना हो आप इस पर इनसे कोई मुआवजा ले लेते कि भाई तुम्हारी दीवार हम सही करेंगे, मुआवजा लेंगे। दीवार तो सही आपने कर दी, मुआवजा नहीं लिया, तो मुआवजा ले लेते इनसे। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस ये हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया और अब मैं आपको वो बातें बताता हूं, उनकी हकीकत बताता हूं कि जिस पर आपने सब्र नहीं किया और आपने मुझसे सवालात किए हैं। उनमें जब भी इनका तज़किरा आया ना दीवार वाले का, तो उन्होंने कहा दीवार इसलिए कि दो यतीम बच्चे हैं शहर में रहते हैं, यतीम बच्चे हैं, उनका खजाना इस दीवार के नीचे है। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका वालिद बड़ा नेक था, उनका वालिद बड़ा नेक था, इस वजह से फरमाया कि ये जो उनको ये बरकत मिली और ये फैजान मिला कि ये खजाना उनका महफूज रहे, वो जब बड़े होंगे तो फिर उनका खजाना उनको मिल जाएगा, तो उनका खजाना कहीं कोई चोर ना ले जाए, डाकू ना ले जाए, ये राहगीर ना उठा के ले जाए, इलाके वाले ना लूट लें और किसी को इतला ना मिल जाए, मैंने दीवार को सीधा कर दिया है। वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका वालिद बड़ा नेक था। मुफस्सिरीन लिखते हैं वो वालिद कोई उनका बच्चों का वालिद नहीं, बल्कि कहा कि कई पुश्तों ऊपर वो वालिद नेक था और उसकी बरकत कहां कहां उसकी नस्लों में भी मिल रही है, नस्लों में भी वो बरकत मिल रही है। तो एक तरफ हम ये देखें कि ये निस्बत अगर अच्छी और उसके फवायद कितने अच्छे और समरात कितने अच्छे, और अगर इन्हीं प्यारी निस्बतों के साथ अगर कोई बेअदबी का मामला या कोई ऐसी चीजें ऐड कर लेता है तो मेरे मोहतरम मदनी चैनल के नाज़रीन वो फिर खसारे में है, वो नुकसान में है। अल्लाह हमें हमेशा अपने प्यारों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। नबियों के बारे में अलैहिस्सलाम, सहाबे कराम अलैहिम रिदवान के बारे में, या औलिया अल्लाह, औलिया इज़ाम, औलिया कराम के बारे में इज्जत वाले एहतराम वाले ये कलिमात याद होने चाहिए। कभी भी किसी के लिए ऐसी कोई भी बेअदबी वाली बात या ऐसा जुमला या कलिमा जिससे बेअदबी का शायबा हो, वो हरगिज हरगिज अपनी जबान से नहीं निकलना चाहिए। मदरसन के नाज़रीन, अल्लाह करीम रब्बुल आलमीन हम सबको हमेशा बा अदब रखे, बा अदब बा नसीब और बेअदब बद नसीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन अदब वालों में ही हमें हमेशा रखे, बेअदबी के शायबे से भी बचाए और बेअदबों के शर से भी हमें महफूज रखे। हमारे इस प्रोग्राम में कुछ सवालात भी शामिल किए जाते हैं, तो आइए अपने सेगमेंट सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं।
क्या नक्शो निगार वाली अंगूठियां पहनना जायज है जिस पर अल्लाह या मोहम्मद लिखा हो, और इस अंगूठी को पहनकर वॉशरूम जा सकते हैं?
मर्दों के लिए चांदी की एक अंगूठी जो कि 4.5 माशे से कम हो, ये जायज है, पहन सकता है मर्द। तो इसके अंदर जो नगीना आपने बयान किया उसके ऊपर कुछ लिखवाना, तो अगर उस पर ऐसी अंगूठी कि जिसमें एक ही नगीना हो, ज्यादा नगीने ना हो, 4.5 माशे से कम वो चांदी की उस अंगूठी का वजन हो। जो लोग दो अंगूठियां पहनते हैं, दो चांदी की भी पहन लें या इतने वजन की भी दो बनाकर पहन लें, ये शरीयत में जायज नहीं है। तो अंगूठी जो जायज है वो इतनी है कि 4.5 माशे से कम वजन की चांदी की हो और एक हो, एक नगीने वाली हो। अब उसके ऊपर जो आप कह रहे हैं कि कोई मुकद्दस कलिमा अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अगर लिखवाना चाहे तो ये जायज है, ऐसी अंगूठी पहनी जा सकती है और उस पर लिखवाना भी ये जायज है। अलबत्ता इसके फिर एहतराम होंगे, बैतुल खला इसमें फिर इसको ले जाने की इजाजत नहीं होगी, ये मकरूह अमल है, इससे बचना चाहिए। और फिर कोशिश यही करे कि इसको बाहर ही कहीं रख कर वो जाए। अगर कहीं माल जाया होने का अंदेशा हो कि अंगूठी बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है, जगह नहीं है, किसी को पकड़ा नहीं सकता, तो या फिर किसी चीज में लपेट कर फिर इसे अपनी जेब में अगर डाल लेता है तो भी ठीक है, फिर भी इसकी गुंजाइश इजाजत है, लेकिन बेहतर यही है कि बाहर ही कोई इसका एहतमाम ऐसा करना चाहिए। ये सुनो कि जब कोई इस पर ऐसे मुकद्दस कलिमात लिखे हुए और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, नगीना है जैसे वैसे ही नगीना है, और अंगूठी अगर किसी ने जो मकदार बयान की है ये 4.5 माशे से कम वजन की अगर चांदी की कोई एक अंगूठी पहनता है तो बहरहाल वो पहनना भी जायज है, और उसको पहने पहने अगर बैतुल खला भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुकद्दस कलिमात अगर उसके ऊपर नक्श हैं, अल्लाह का नाम, फरिश्तों के नाम या नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम, इस तरह कोई चीजें उस पर मुकद्दस कलिमात हैं, तो फिर उसे गुरेज करें, उसको पहनकर इस तरह वाशरूम वगैरह बैतुल खला ना जाए। आमीन बिजाहिन नबी जलामीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।